रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेत्रुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे।
साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।
तू दयालु येसु है, तू कृपालु, तेरा हो नाम प्रभु पावन सदा।
गाँव में तू दयालु येसु है, तू कृपालु, तेरा हो नाम प्रभु पावन सदा।
धरती आसमां चांद तारे भी पुण्य नाम गुण गाते सदा।
धरती आसमां चांद तारे भी पुण्य नाम गुण गाते सदा।
दयालु येसु है, तू कृपालु, तेरा हो नाम प्रभु पावन सदा।
आए हैं हम आए हैं प्रभु तेरे हम आभारी। आए हैं हम आए हैं प्रभु तेरे हम
करता है प्यार हमेशा, विपदा से है बचाता हमें। तू करता है प्यार हमेशा, विपदा से है बचाता हमें, भूखों की तू भूख मिटाता, प्यासों की तू प्यास बुझाता, भूखों की तू भूख मिटाता, प्यासों की तू प्यास बुझाता। गाँव में तू दयालु यीशु है तू कृपालु, तेरा हो नाम प्रभु पावन सदा। जनों का तू ही सहारा, पीड़ित जन का प्रेमी पिता, दीन जनों का तू ही सहारा, पीड़ित जन का प्रेमी पिता, मन को आशा किरण दिखाता, प्रसन्न करता तू ही पिता, मन को आशा किरण दिखाता, प्रसन्न करता तू ही पिता। गाँव में तू दयालु यीशु है तू कृपालु, तेरा हो नाम प्रभु पावन सदा। धरती आसमां चांद तार भी पुण्य नाम गुण गाते सदा,
धरती आसमां चांद तार भी पुण्य नाम गुण गाते सदा।
गाँव में तू दयालु यीशु है तू कृपालु, तेरा हो नाम प्रभु पावन सदा।
साथियों अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का, तो साथियों आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत, तो साथियों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम युवा और विकास।
युवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक चर्चा, बेघर होते बुजुर्ग। इसका आलेख इंदु संतोष का है और इसमें भाग ले रहे हैं संतोष जोशी और इंदु संतोष।
संतोष जी नमस्कार।
नमस्कार इंदु जी और हमारे
सभी श्रोताओं को
भी हमारा नमस्कार
जी।
इंदु जी आज जो युवा विकास में हमने चर्चा, आपने आलेख जिसका प्रस्तुत किया है बेघर होते बुजुर्ग, तो इसके विषय में आपका क्या दृष्टिकोण रहा है सबसे पहले आलेख तैयार करते समय, थोड़ा हमें कुछ बताएं।
संतोष जी मनुष्य की देखिए सबसे बड़ी कमी है कि वो वर्तमान की उपेक्षा कर भविष्य की चिंता में घुलता रहता है। देखा होगा आपने प्राय यही होता है कि वो वर्तमान का सुख छोड़ के भविष्य की चिंता में घुलता रहता है। वो यही सोचता है कि कल क्या होगा, आज के बारे में नहीं सोचता है, सोचता है कल क्या होगा,
कल क्या होगा।
फिर वो ये भी सोचता है हमारा कल, हमारा बुढ़ापा अच्छा ही बीतेगा, हमने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले हैं। लेकिन सोचिए क्या प्रत्येक बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल करते हैं?
ये सवाल जो है देखिए आज के समाज में बड़ा ही ज्वलंत एक प्रश्न है ये कि क्या बच्चे अपने बुजुर्गों को उतनी अहमियत देते हैं, उतना महत्व देते हैं या नहीं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा देखें कि पहले हमारी जो संस्कृति रही है
जी,
वो संस्कृति ये रही है कि सुबह उठते थे बच्चे, तो उठने के बाद उन्हें ये इस तरह की बात बताई जाती थी कि उठते ही सबसे पहले अपने बुजुर्गों के पैर छूना है और फिर अपना दिन शुरू करना है। उसके पीछे भावना यही थी कि उनका आशीर्वाद लेना है
जी।
वो आप
ज्वाइंट फैमिली भी थी, संयुक्त परिवार थे संतोष जी, और बाकायदा बच्चे समझते थे कि ये हमारे बड़े हैं, हमें इनका कहना मानना है।
और जैसे जैसे समाज ने उन्नति की हर मामले में, शिक्षा के मामले में, मनोरंजन के मामले में, हर मामले में, तो ऐसा लगा जैसे कि इतनी सारी सुविधाएं जुटा दी गई हैं आज आसपास कि हर एक को लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं
जी।
तो युवा भी इससे अछूते क्यों रहे, उन्हें भी लगता है कि हमारे पास जो इतनी सारी चीजें हैं आसपास, हमें सरगुण संपन्न जैसे कहना चाहिए
जी,
हम तो वैसे हो गए, हमें किसी की जरूरत नहीं, ना हमें बड़े बूढ़ों का कोई हमें आशीर्वाद चाहिए या कोई ऐसी बात है। तो इस भावना ने काफी हद तक एक ऐसा एक माहौल खड़ा कर दिया कि जिससे बुजुर्ग अपने आप को एक अलग थलग महसूस करने लगे।
ऐसा ना संतोष जी, कहते भी हैं कि जैसे घर छोटे हो गए ना तो दिल भी छोटे हो गए।
ये बात
संतोष जी एक परिचित हैं, उनका कहना है कि जिंदगी की आखिरी पड़ाव पर खड़े होकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि मुझे आखिर किस ओर जाना है, क्योंकि एक ओर मैंने बूढ़े होने का दर्द सहा है और दूसरी ओर मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे अकेला छोड़कर कई चुनौतियों का सामना करने को बेबस कर दिया है।
हाँ देखिए, बात वही है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने सारे जीवन में इतना संघर्ष कर चुका होता है कि इस पड़ाव तक आते आते वो अपने आप में एक थकान सी महसूस भी करता है। अब यह है कि इतने वर्षों का संचित किया हुआ अनुभव और संघर्ष
जी,
जब उसका प्रतिबिंब युवा पीढ़ी अपने आप में देखे, ये जरूरी है कि हमें इससे क्या सीखना मिलता है, हम कैसे इनके अनुभव से ज्यादा लाभ ले सकते हैं
जी।
अगर ये सोचने लगे तो बहुत कुछ मिलेगा उन्हें, लेकिन बात देखने की है, समझने की है, सोचने की है।
तो वो जो मेरे बड़े परिचित हैं तो वो कहते हैं कि एक तरफ मुझे इस उम्र में, इस बुढ़ापे में स्नेह की छांव और किसी का साथ चाहिए जो हमेशा मेरा ख्याल रख सके, तो दूसरी ओर मुझसे कहा जा रहा है कि खुद अकेले रहकर जीना सीखो।
देखिए, पहले वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अकेले रहकर जीना सीखो, तो देखिए अगर परिस्थिति ऐसी होती है कि किसी मनुष्य के सामने कोई चारा ही ना हो, तो फिर तो वो मजबूरी में सब कुछ करता है, हर तरह से जीना उसे पड़ता ही है
जी।
लेकिन अगर हम कर्तव्य बोध की बात करें कि हम ये सोचें कि घर के जो युवा है, जो अगली पीढ़ी है, उसका क्या कर्तव्य होता है, वो किस तरह से अपने बुजुर्ग को अपने सामने रखकर देखती है, तो मेरे ख्याल से ये बात कभी नहीं कहे वो, कभी नहीं कहना चाहिए कि अकेले रहकर सीखो।
वो बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन भर उड़ने के बाद अब मुझे आराम चाहिए।
अपना जिसे एक शब्द है अंग्रेजी में प्राइवेसी, तो उनका अपना परिवार हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि हमारी अलग एक ऐसी व्यवस्था हो जहां हमें बड़े बूढ़ों का उसमें कोई तरह का किस तरह का दखल नहीं हो, हम जब अपनी दिनचर्या सुबह से शाम तक निभाएं तो उसमें किसी की हमें किसी की तरफ देखना नहीं पड़े कि वो उसके बीच में आ रहा है
जी,
या अपनी राय दे रहा है या कोई बात कह रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, तो ये चीज जो है टकराहट का कारण बनती है।
देखिए बुजुर्ग यूं ही नहीं बन जाते, जीवन भर मेहनत करते हैं, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए अच्छा मकान बनवा देते हैं, और आज वही बच्चे, वो मेरे परिचित कहते हैं कि वही बच्चे मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। क्या हम दोनों के बीच जो उम्र का अंतराल है वो हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है? मुझे याद आता है संतोष जी, महान विचारक गेटे ने लिखा है, अरे ओ मनुष्य, अरे ओ विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी, तू ईश्वर का अंश है, संसार में तेरा जन्म कीड़ों की तरह रेंगने के लिए नहीं हुआ है।
देखिए, काफी प्रेरक बात है ये, और किसी भी मनुष्य को ये प्रेरणा देने के लिए कि उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसे काम अपना जारी कैसे रखना चाहिए, एक अपनी मेहनत और अपनी पुरुषार्थ के बल पर, ये उसके लिए प्रेरणा देता है।
हाँ, आगे वो कहते हैं कि तेरा जन्म गरीबी के नरक में सड़ने के लिए नहीं हुआ, बल्कि तेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। तू ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ संतान है, तेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। संसार का कोई भी धन, कोई भी सौंदर्य, कोई भी सुख तथा कोई भी यश तेरे लिए ऐसा नहीं कि तुझे नहीं मिलेगा। तू अपनी दुनिया का राजकुमार है, सभी रत्न भंडारों पर तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मगर पहले अपने आप को पहचान। जिंदगी का मकसद इंसान की खिदमत कर। तो मेरे इन बातों पर ध्यान दिया, आज बुढ़ापे में मेरे बच्चे मुझे अलग कर रहे हैं, ये अंतराल ही हम दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। अंततः मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि अब वो मेरा साथ नहीं रह सकता।
एक बात हम कहना चाहेंगे यहाँ पर, आपने बिल्कुल सही इसका चित्रण जो किया है वो बिल्कुल सही है। आज कमोबेश हर जगह ये बात हमें दिखाई देती है। हम ये कहते हैं कि जिस वक्त जो युवा पीढ़ी है, जो युवा हैं, जिस वक्त उनकी उम्र इतनी छोटी थी, इतने छोटे थे वो, कि बिना सहारे के नहीं चल पाते थे, और उनके लिए मार्गदर्शन और सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी था, तो वो किसने दिखाया? इन्हीं बुजुर्ग, इन्हीं माँ बाप ने, जो आज बुजुर्ग हैं। तो जब उन्हें उंगली पकड़ने की जरूरत थी तो अपनी उंगली उन्होंने उसे दी, उसे सहारा दिया, उसे खड़ा किया, उसे पांव पांव चलना सिखाया, एक एक पैर आगे बढ़ाना सिखाया। तो तब अगर वो सोच लेते कि हमें क्या करना, सीखे अपने आप, तो क्या ये हो सकता था? नहीं।
देखिये संतोष जी, माँ बाप तो एक ही होते हैं, और चार पांच छह बच्चे होते हैं, दो तीन बच्चे होते हैं, वो उनको पाल सकते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, शिक्षा दिलवाते हैं। क्या वो सब बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते?
बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल पालना चाहिए।
मुझसे कहा कि मेरे पास तो कोई दूसरा ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो घर मैंने बनवाया था वो तो बहुत पहले मेरे बेटे ने अपने नाम लिखा लिया था।
अच्छा।
आखिर लोगों ने कानून का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी कि आप कानून के पास जाओ, वो आपकी मदद करेगा, पर मैं अपने ही का प्यार पाने के लिए अदालत का सहारा नहीं लेना चाहता था। मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया गया। यहाँ मेरे जैसे बहुत से साथी मिले, हमने अपनी दुनिया जरूर बना ली, सबके साथ सबके सामने हम हंसते जरूर हैं, पर भीतर ही भीतर अपनी ही औलाद से बिछड़ने, उनके बुरे व्यवहार से आहत हमारा मन अकेले में हमेशा रोता रहता है। बूढ़ा होना क्या रिश्तों की नींव को हिलाने के लिए काफी है?
देखिए, कटु सत्य है ये प्रश्न या सच्चाई, केवल ये प्रश्न या सच्चाई का केवल सवाल नहीं है यहाँ पर, ये सच्चाई है या ये प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है। ये एक वृद्ध की नहीं, वरन आज हमारे देश में अनेक ऐसे बूढ़े माता पिता हैं जिनके बच्चों ने उन्हें घर से बेघर कर दिया है। कुछ तो उन्हें बिल्कुल एकदम निराश्रय छोड़ देते हैं,
ध्यान बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देते। अकेले रहने का दंड इस उम्र में उन्हें झेलना पड़ता है, जब उन्हें बिस्तर से उठने के लिए पहले अपने घुटनों पर तेल लगाना पड़ता है, जब दरवाजा खोलने के लिए उन्हें अपनी धुंधली आंखों पर चश्मा लगाना पड़ता है, उस समय उनके लिए मीठी मुस्कान फेंकने वाला कोई नहीं होता, उनकी उखड़ती सांसों को संभालने वाला कोई नहीं होता।
सही बात है, ये त्रासदी ऐसे बुजुर्गों की है जिनके बच्चे आज उनके त्याग और प्रयासों के बल पर उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां उनके पास हर तरह की सुख सुविधा है।
जी,
दरअसल ऐसी संतान आजादी चाहती है, और उनके माता पिता उन्हें अपनी आजादी में बिल्कुल बाधा समझते हैं।
जी,
सही बात है ना, कि भाई एक स्टेटस भी कोई चीज होती है जो उनके सामने आती है, भाई अपने स्टेटस में वो उनको बिल्कुल नहीं चाहते, उन्हें बिल्कुल अलग थलग, जैसे मखमल में टाट का पैबंद वो वाली बात हो जाती है। उन्हें अपने माता पिता का उनके जिंदगी के मामलों में कुछ कहना बहुत बुरा लगता है। माता पिता की सलाह उन्हें बहुत बुरी लगती है। बच्चों को तो उन्हें बूढ़े माता पिता अपनी जिंदगी और घर से दूर रखना अनिवार्य हो जाता है ना? और ये सोच पीढ़ियों से बच्चों और बूढ़ों के बीच एक खाई का काम करती है।
आधुनिक जीवन शैली से प्रभावित की ये नई पीढ़ी की अपने ही हजारों दिक्कतें हैं और बुजुर्गों की समस्याओं का निराकरण या उनकी भावनाओं को समझने का समय ही नहीं है।
हाँ।
उनके पास नहीं होता है। छोटे होते घर, पति पत्नी दोनों की अस्त व्यस्त जिंदगी, उनके पास समय ही नहीं है। छोटे होते घर, पति पत्नी दोनों की व्यस्तता, किस्तें चुकाने की परेशानी, पैसा कमाने की धुन और बौनी होती भावनाओं के बीच बुजुर्ग जैसे सामान बन जाते हैं। औलाद सोचती है कहाँ है उनके पास समय माँ बाप की समस्याओं को सुलझाने की।
देखिए, आधुनिकता से भरे, मैंने कहा ना कि जैसे ये धीरे धीरे जो हर चीज में सुविधाएं मिलती गई
जी,
और आगे हर हम दृष्टि से आगे बढ़ते गए हैं, शिक्षा के मामले में, मकान के मामले में, घर के मामले में, सड़कों के मामले में, मनोरंजन के मामले में, हर मामले में प्रगति होती गई होती गई होती गई होती गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस बदलते परिप्रेक्ष्य में, इस वातावरण में, जो घर के बुजुर्ग थे
जी,
जो एक कहीं बैठे हुए हैं कोने में कहीं घर में
जी,
वो ऐसे सामान बन गए घर के अंदर जिन्हें जब चाहा उठाया और जब चाहा फेंक दिया, जब जरूरत नहीं समझी फेंक दिया
जी।
अपने अपने विचारों पर यही दोनों पीढ़ियों के बीच जब वैचारिक असमानता होती है, तो मतभेद होता है, तो वो फिर अकेले रहने को मजबूर हो जाता है जो बुजुर्ग है वो।
मैकेन्स हेल्थ सेंटर के मनोवैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी देशों में बच्चों और माँ बाप की अलग स्थिति हमेशा बनी रहती है और वहाँ इसे एक आम चलन के रूप में स्वीकार किया गया है। पर भारत में इसका बढ़ता चरण भौतिक चीजों के प्रति लगाव और मशीनी होती जिंदगी के फलस्वरूप ही बढ़ा रही है। शहरी जीवन में आगे निकलने के फलस्वरूप ही ये बढ़ा है। शहरी जीवन में आगे आने कि होड़ होड़ सी लगी है, टकराव है आपस में, रिश्तों में अहम का टकराव इतना ज्यादा हो गया है कि अपनी उलझनों के बीच माता पिता बोझ लगने लगते हैं।
हाँ बिल्कुल, और ऐसे में बुजुर्ग कहाँ भटकते हैं, उनके पास ये सोचने का समय तक नहीं है
जी।
अभी जरूरी नहीं है कि केवल वही बुजुर्ग इस त्रासदी को झेल रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, अकेले तो वो भी हैं जो संपन्न हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें पैसों से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए होता है
जी।
तो इंदु जी, हमने चर्चा की बेघर होते बुजुर्ग युवा विकास के अंतर्गत, इसका आलेख आपका था
जी।
और हमने इस पर चर्चा की, तो श्रोताओं से अब कहें
नमस्कार।
साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत जिसके बोल हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं।
तेरी महिमा गाते हैं सर्वोच्च परमेश्वर,
हम तेरी महिमा गाते हैं सर्वोच्च परमेश्वर।
Thank you. गड़िया तेरे ही प्यार ने हमें है बचाया। महिमा गाते हैं सर्वोच्च परमेश्वर, हम तेरी महिमा गाते हैं सर्वोच्च परमेश्वर। सर्वोच्च परमेश्वर, हम तेरी महिमा गाते हैं सर्वोच्च परमेश्वर।
साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत जिसके बोल थे हम तेरी महिमा गाते हैं। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है RVA हिंदी। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVA हिंदी। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है RVA हिंदी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो RVA मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए RVA हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।